ओम शांति। आप सबका बहुत बहुत भव्य स्वागत है कि आप सब हिम्मत रख के ऐसे वातावरण के होने के बावजूद भी आप प्यारे बाबा के घर पहुंच गए और वो भी स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में, जबकि चारों तरफ शांतिवन, ज्ञान सरोवर, पांडव भवन, सब तरफ शिविर चल रहे हैं, योग तपस्या के कार्यक्रम चल रहे हैं। 13 तारीख तक तो मधुबन वासी, शांतिवन वासी, ज्ञान सरोवर वासी, सब रहवासियों का योग शिविर चला। ये बठियां स्वयं की उन्नति के लिए और सर्व को कैसे उन्नत करें उसकी युक्तियां सबको बहुत सुंदर रूप से स्पष्ट की गई, क्योंकि ये समय है अपने जीवन को दिव्य बनाकर अनेक आत्माओं के जीवन को दिव्यता का रास्ता दिखाने की। आपको 5 बजे कहा आप आ जाइए, क्योंकि 5 से 6 घंटा योग करेंगे, फिर 7 से 8 से योग करेंगे। तो ऐसा नहीं कि योग में आपको इंतजार करनी है कौन आएगा क्लास कराने के लिए, लेकिन आप आए ही हैं योग भट्टी में, तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा आपको समय मिले तो आप इस योग का अवश्य लाभ उठाएंगे। ऐसा नहीं कि क्लास हो रही है तो वो बच्ची है, और जब क्लास नहीं केवल योग में बैठे हैं तो वो बच्ची नहीं है, वो विशेष बच्ची है। क्लास एक बच्ची को पंखा देने का काम करती है ताकि अग्नि और ज्यादा प्रचंड हो सके। बाकी विशेष रूप से योग का ही कार्यक्रम चलता रहेगा। और आप सबको कुछ समय पहले के बाबा के महावाक्य याद होंगे। बाबा ने बहुत सुंदर कहा था कि मैं शिव कल्याणकारी भगवान एक ही हूँ। सब विश्व की आत्माएं कहती हैं परमात्मा एक है और मैं एक ही हूँ, इसलिए मुझे एक के ही मंदिर चारों तरफ विश्व में होने चाहिए। परंतु मेरे मंदिरों के साथ साथ कई देवताओं के, देवियों के मंदिर भी स्थापित किए जाते हैं और भक्त जन वहां भी जाकर पूजा अर्चना करते, लेकिन कभी जानने की कोशिश नहीं की कि जब भगवान एक है तो हम सभी को भगवान का स्वरूप क्यों मानते हैं। ये कौन है जो देवी देवताओं के रूप में, जिनकी प्रतिमाएं, जिनकी मूर्तियां विभिन्न मंदिरों में स्थापित की गई हैं। तब प्यारे बाबा ने बहुत सुंदर महावाक्यों में ये स्पष्ट किया था कि बच्चे ये देवी देवताएं जो मुझ शिव के मंदिर के साथ साथ अनेक मंदिरों में स्थापित मूर्तियां हैं, ये मेरे सहयोगी बच्चे हैं जिन्होंने पुरुषोत्तम संगम युग में मुझ सर्वशक्तिवान के इस श्रेष्ठ कार्य में पूर्ण रूपेण अपने जीवन के परिवर्तन से, अपने मन वचन और कर्म विश्व की सेवा में विश्व आत्माओं को सौंपे, जिन्होंने मेरे हर कर्तव्य में, अपनी हर कर्म में अपनी उंगली लगाई और इस गोवर्धन पर्वत को उठाने में सहयोग दे रहे हैं, ये वास्तव में वो बच्चे हैं जिनको सहयोगी बच्चे कहेंगे, जो भविष्य में देव पद को प्राप्त करते। इसलिए ये कोई परमात्मा के स्वरूप नहीं है, मेरा तो एक ही स्वरूप है, देखिए ये देवी देवताओं के जो मंदिर हैं, ये मेरे सहयोगियों के मंदिर हैं। तो हम सब समझ सकते हैं कि जितने भी मंदिर में जहां देवी देवताएं हैं, वो बाबा के हम यथाशक्ति सहयोगी बच्चे हैं। सहयोगी बच्चे इस समय सहयोग भी देते हैं, और सहयोग कल पहले वाला जो दिया हुआ है उसकी यादगार मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना भी करते हैं। अब हम जानते हैं, पहचानते हैं, इसलिए हम पूजा करते हैं। तो मैं एक बार, क्योंकि बच्ची में आए हो, तो बच्ची का मतलब ये है कि भट्ठी में सब कोयले अगर इकट्ठे ही पड़ जाते हैं और धुएं वाला भी उस इकट्ठे कोयलों के तप्त होने पर वो भी धुआं छोड़ देता है, उसका धुआं भी समाप्त हो जाता है, वो भी लाल हो जाता है। तो भट्ठी का मतलब यही कि हम सब एक ही टाइम पर क्लास में उपस्थित हो जाए। आगे पीछे मान लीजिए अभी आ रहे हैं, क्योंकि आज फर्स्ट डे है और आज स्वागत भी आपका उस रूप से नहीं हुआ, तो मैं देख रही हूँ जो बहनें इधर बैठी हैं वो हर आए हुए को देख रही हैं, कौन आया है, जबकि उनका काम नहीं है, लेकिन नेत्रों को कंट्रोल करना शायद संभव नहीं लग रहा। वो सबको अच्छी तरह देखती हैं, कौन आया, पूरा कहाँ बैठा, चल के वो भी देख लेते हैं। तो इन सब चीजों से आपको उपराम होना होगा अगर आपको स्वयं की स्थिति का निर्माण करना है। अगर हमारी दृष्टि में एकाग्रता नहीं होगी, दृष्टि इधर से उधर जाएगी, उसके निमित्त देर से आने वाले भी बनते हैं जो सबका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। कई बार कोई छोटी मोटी बात होती है, कहते पता नहीं हमने कोई ऐसा पाप कर्म तो किया नहीं, क्यों दुख कला क्लेश लगा ही रहता है। ये कहा जाता है हंसते खेलते भी चलते फिरते भी मनुष्य पाप कर लेता है, उसे पता नहीं चलता है। मान लीजिए हम सब बैठे हैं, समय से बेसमय कोई आता है, आके बीच में बैठता है, इधर बैठता है, तो सबका ध्यान खिंचवाता है। टाइम बहुत बड़ी धन है, ऐसी मनी छीन ली किसी से तो क्या ये चोरी नहीं की है, और चोरी का दंड क्या नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार बाबा हम बच्चों को कहते हैं छोटी छोटी बातों का भी बहुत अटेंशन रखना। अभी यहां आए हैं भट्ठी में, तो स्वाभाविक है एक स्थान से कुछ ज्यादा ज्यादा आए हैं, कहीं से कुछ कम है, लेकिन ग्रुप ग्रुप होंगे और आपस में दिन रात मिलकर बैठते तो नहीं है, और यहाँ आपको दिन रात खाना पीना सब इकट्ठा है तो बड़ा अच्छा लगेगा आपस में मिलना जुलना बातचीत करना। लेकिन बाबा का हमेशा कहना है कि संगठन में स्वयं को अकेले समझना, रहना संगठन में ही, ऐसा नहीं छुड़ बछुड़ होकर इधर से उधर रहो, किसी को देखो नहीं, किसी से बोलो नहीं, लेकिन बात करते भी याद रखना मैं और मेरा बाबा। अगर तीन दिन ऐसे बाबा का स्नेह संबंध और सहयोग लिया जाए, इस कदर हम बाबा की याद में स्थिर हो जाए, तो मैं समझती हूँ कि आपके तीन दिन बहुत सफल होंगे और बहुत उच्च प्राप्तियों को लिए हुए होंगे। इन चीजों का जरूर ध्यान देना, आपस की वार्ता जितनी कम से कम हो सके, क्योंकि जब मिलते हैं तो लेन देन कुछ तो करेंगे ही, तो उसका क्या है इसका क्या है, ये कोई भी आदान प्रदान यहाँ ना किया जाए। सब बातें छोड़कर एक बाबा दूसरा मैं तीसरा ना कोई, इसको कहते भट्ठी। भट्ठी का मतलब कुछ और नहीं है, मानो उस समय एक धुन है, एक लगन है कि उस प्रभु की याद की अगन में तपना है और अपने जन्म जन्मांतर के भी कर्मों को दग्ध करना है। क्योंकि हम सबको मालूम है कि देह में जो कष्ट रोग दुख किसी प्रकार का भी अगर आता है तो हमारे ही किन्हीं पूर्व के कर्मों का खाता होता है। और खाते को समाप्त करने के लिए बाबा ने विशेष बताया है, या तो योग बल है, जिस योग बल से भी कर्मों को विनाश करेंगे, और या भोग बल है, जिस भोगना के आधार से आप समाप्त करेंगे। तो मैं ऐसा कहूंगी, आप 3 दिन के लिए अपने भोगों को योग के आधार से समाप्त कर ऐसे हल्के हो जाएं कि दुख रोग आपका पीछा छोड़ दें। कोई शोक दुख की बात आपको घेरे नहीं, क्योंकि दुख रोग शोक हमारे ही कर्म का खाता है। और अगर आपने पूर्व के कर्मों को जो विकर्मी खाते में गए हैं वो योग के आधार से स्वच्छ किया है, तो वो आपको भोगना नहीं हो पाएगी। इस बात का बहुत ख्याल रखना। और ये भी ध्यान रखना, जो बाबा ने हमको काम दिए हुए हैं, क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है, बच्चे पेपर तो केवल लास्ट 1 सेकंड का होगा, मुक्ति जीवन मुक्ति तो 1 सेकंड में मिलती है, तो इतना लंबा समय फिर हम क्या करते हैं? इतना लंबा समय जो हम पढ़ाई पढ़ते हैं, जो हमें बाबा होमवर्क देते हैं, वो हम सब करते हैं अपने जीवन को संवारने और सुधारने का। और प्रतिदिन हमें बाबा के दिए हुए काम जब करते हैं तो हमारे नंबर ऐड होते चले जाते हैं, और लास्ट केवल 1 सेकंड का पेपर रह जाता है, जो अंतिम पेपर है जिसमें पास फेल का सवाल आ जाएगा। इसलिए अंतिम पेपर की तैयारी इस समय हम सब कर रहे हैं। तो उस तैयारी करने के लिए आप यहाँ पधारे हैं और आप देख रहे हैं कैसा टाइम चल रहा है। मैं बाबा का कई बार एक अनुभव सुनाती हूँ कि साकार बाबा जिस कमरे में रहे हुए थे, अचानक उनके साथ वाला कमरा सामने वाला जहां से बाबा हमेशा दिखाई देता रहा, वहां हमको सोने का सुअवसर मिला। मैंने देखा कि बाबा रात को कुछ लिख रहे हैं और टेबल लैंप अपने टेबल पर रखी है, और उस टेबल लैंप के ऊपर टॉवल बड़ा सा तौलिया डाला हुआ है ताकि ये लाइट किसी को डिस्टर्ब ना करे। तो मैंने देखा बाबा कुछ लिख रहे हैं, मैं देख कर फिर मैं सो गई। क्लास के पश्चात जब बाबा के कमरे में गई तो मैंने बाबा से ऐसे ही कहा, बाबा आज रात को आप कुछ लिख रहे थे। बाबा ने पहली बात पूछी, क्या बच्चे वो लाइट तुम्हें डिस्टर्ब कर रही थी? मैंने कहा नहीं बाबा, लाइट डिस्टर्ब नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझ तक लाइट नहीं आ रही थी, टॉवल के आधार से लाइट को सेंटर किया गया था, तो मुझे लाइट ने कोई डिस्टर्ब नहीं किया। फिर बाबा ने दूसरी बात कही, रात को नहीं बच्ची, सुबह लिख रहा था, क्योंकि उस समय 4:45 होंगे, पहले हम 4 बजे ही उठकर योग करें ऐसा सिस्टम नहीं होता था, इसलिए हमको तो रात ही लगी। लेकिन बाबा ने स्पष्ट किया, रात नहीं, वो सवेरा था। और तीसरी बात, फिर बाबा ने ये बात कही कि बच्चे, बाबा ने काम दिया था बच्चों को, होमवर्क दिया था, और मैं वो होमवर्क कर रहा था, अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं बच्चों से पूछूंगा कैसे कि आपने होमवर्क किया, इसलिए बाबा होमवर्क कर रहा था। तो नंबर 1 विद्यार्थी बन करके, पढ़ाई पर अटेंशन दे करके बच्चों के सामने एक एग्जाम्पल बने वो साकार बाबा, जिनका हम प्रति वर्ष विशेष स्मृति दिवस मनाते हैं और कहते हैं स्मृति दिवस ना कहो, इसे समर्थी दिवस कहो। ये प्यारे बाबा का वो इतिहास हमारे सामने आता है जिससे हम समर्थवान बन सकते हैं। दूसरी बात मैं बाबा की एक सुना रही हूं आजकल कि बाबा की ये आज्ञा है इस समय कि बच्चे अमृत वेला 4 बजे जब तुम बच्चे उठते हो तो ये टाइम अपॉइंटमेंट आपकी नहीं, ये मैंने आपको अपने से मिलने का टाइम दिया हुआ है, ये खास बच्चों के लिए टाइम रखा है। जो टाइम बाबा ने हमें अपने से मिलने का दिया हुआ है उस टाइम पर अगर हम बाबा से मिलते हैं तो बाबा हम बच्चों की हर बात सुनता है, और ना भी सुनाएंगे तो बाबा हम बच्चों को विशेष अपनी शक्तियों से भरपूर करता है। ये बाबा ने अपने बच्चों का टाइम रखा हुआ है। कभी भी बाबा का ये टाइम हम अपने सोने या किसी अन्य कार्य में ना बिता दे, इसका जरूर ध्यान रखें, क्योंकि इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है। आज हम सबको मालूम है कि बाबा कहते हैं कि अपनी जो आदरणीय दादियां या अपने प्रमुख भाई कुछ इस प्रकार की महान आत्माएं जो ब्राह्मण जीवन में बहुत श्रेष्ठ जीवन जिया, ऐसे बच्चे एडवांस पार्टी में गए हैं और वो बाबा की सेवा पर तत्पर है। तो कई बार हम जानना चाहते हैं कि कौन है एडवांस पार्टी में और क्या सेवा हो रही है, कैसे ये सेवा कर रहे हैं। तो बाबा ने सारा स्पष्ट किया हुआ है, ये ब्राह्मण जन्म 84वां अंतिम जन्म, इस जन्म में जितना जो पुरुषार्थ किया है वो आपका फाइनल पुरुषार्थ है, फिर आपकी कर्मातीत अवस्था है, शरीर छोड़ दिया है। लेकिन अब जो आत्माएं इन एडवांस मुझे एडवांस पार्टी में है वो केवल मात्र मेरी सेवा अर्थ मैंने उन्हें ट्रांसफर किया है अन्य स्थानों पर, क्योंकि किसी भी स्थान को घेराव डालना हो तो बाबा ने कहा चारों तरफ सेना को फैला देना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार सारे विश्व में इस आध्यात्मिकता का घेराव डालना है, सबको बाप का संदेश देना है, तो ये मेरे बच्चे विश्व के चारों तरफ फैल चुके और चारों तरफ संदेश देने का कार्य करेंगे। कैसे? तो बाबा ने स्पष्ट किया कि प्रातः 4 बजे उठकर योग लगाना ये जैसे इनका स्वभाव बन चुका है, और वो जो स्वभाव है उसके वशीभूत ये आज भी चाहे छोटे हैं या बड़े हैं, लेकिन प्रातः 4 बजे ये आत्माएं आज भी उठ जाती है। और मैं इन बच्चों को अपने वतन में बुला लेता, ये इन्हें नहीं पता है, और जब ये वतन में मेरे पास आती हैं तो ये विस्मृत हो जाती हैं कि हमने देह कभी छोड़ी थी और दूसरी जगह जन्म लिया है। लेकिन उनको उस समय ऐसा ही प्रतीत होता है कि हम बाबा के पास थे और हैं और बाबा के साथ हमारा आदान प्रदान हो रहा है। उनको वो सब विस्मृत हो जाता है और बाबा के वतन में ये आत्माएं सुबह 4 बजे पहुंच जाती हैं। और हर आत्मा को जो एडवांस पार्टी के मेरे बच्चे हैं, जो संपूर्ण बन के गए हैं, उन बच्चों को मैं सारा दिन आज इन्हें क्या सेवाएं करनी है उसका पूरा प्रोग्राम देता हूं, हर प्रकार का प्रोग्राम इनको समझाता हूं, क्या कैसे कहां क्या करना है, ये सब प्रोग्राम मेरे से लेती और टाइम होने पर वापस चली जाती हैं जहां इनका स्थान है, जहां इनका जन्म हुआ है, और जाने पर ये बिल्कुल विस्मृत हो जाती हैं कि हम कहीं प्रातः गए थे और वहां से कुछ प्रोग्राम हमको मिला था, ये सब कुछ भूल जाती हैं, लेकिन जो मैं प्रोग्राम इनको देता हूं इनमें वो रिकॉर्डिंग हो जाती है। वो ऐसी रिकॉर्डिंग है कि ऑटोमेटिकली अपने आप इनसे वो सेवाएं होती है। इस प्रकार ये बच्चे मेरे से डायरेक्शन लेकर के मेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सेवाओं पर तत्पर। इनका अभी किसी देहधारी से इस प्रकार का बाकी रिलेशन नहीं है, जहां जन्म दिया वो भी किसी सेवा अर्थ इनको उस स्थान पर भेजा गया है, और जिनके साथ इनकी सेवा का संबंध हो सकता है वहां वहां ये बच्चे होते हैं। इस प्रकार मैं इन बच्चों से सेवा लेता हूं। और दूसरा, 4 बजे का आप देखिए कितना महत्व हुआ कि शरीर छोड़ देने पर भी बाबा से कनेक्शन नहीं टूटता, बाबा से कनेक्शन जुटा रहता है, और प्रातः 4 बजे ये वतन में आत्माएं पहुंच जाती हैं। चाहे बाबा खींच लेता है लेकिन ये उठकर बैठी हैं, बाबा ने इनको खींचा और वतन से इस साकार वतन की सेवाओं का सारा जो भी जिम्मेवारी है वो इनको सब कुछ समझा देते। दूसरी बात जो 4 बजे उठने की है, बाबा एक बात ये भी कहते हैं कि उठो सुबह, थोड़ा टाइम विश्व की आत्माओं को योग का साकार। बहुत आत्माएं दुखी अशांत परेशान हैं, उनको कोई ठिकाना नहीं मिलता, कोई मंजिल नहीं दिखाई देती, समझते नहीं क्या किया जाए और कैसे जीवन सुख शांति संपन्न रह सकता है। तुम बच्चों का मुझ सर्वशक्तिवान से कनेक्शन है, इसलिए इस कनेक्शन के आधार से आप मेरे से शक्तियां ले सकते हो, और उन शक्तियों को स्वयं में यूज करते हुए इन शक्तियों का साकाश रूपी सहयोग विश्व की आत्माओं को दो। तब बाबा ने कहा था, अगर सारा दिन ज्यादा टाइम नहीं कर सकते हो तो दिन में एक टाइम निश्चित कर, एक टाइम थोड़ा समय भी हमको विश्व की आत्माओं को योग का साकाश जरूर देना। बाबा ने कहा मेरे से कनेक्शन आत्माओं के टूटे हुए हैं, लेकिन आत्माओं का देह में आकर के देहधारियों से कनेक्शन जुटे हुए। तुमने मुझको पहचानना है मेरे द्वारा, इसलिए आपका मेरे से कनेक्शन जुटा है, और आप मेरे से शक्ति ले सकते हो, और जो मेरी शक्तियां हैं उसका सहयोग साकाश के रूप में विश्व की आत्माओं को दे सकते। ख्याल रखना बच्चे, इस पर बाबा ने बहुत सुंदर बात एक बार कही थी, समय इतना भयानक धीरे धीरे आता चला जाएगा कि लाखों करोड़ों के अंदाज में इकट्ठे इकट्ठे शरीर छोड़ेंगे। चाहे वो सागर का भूचाल हो या धरती का भूचाल हो, किसी प्रकार की बाढ़ हो, आग हो, प्रकृति का कोई भी प्रकोप हो, उस प्रकोप में बहुत आत्माएं इकट्ठी ही शरीर छोड़ेंगी, और जब इतनी आत्मा इकट्ठी इकट्ठी छोड़ेंगी, मुक्ति का द्वार अभी खुला नहीं, गर्भ में सब आत्माएं जा नहीं पाएंगी, तो कुछ आत्माएं वातावरण में मंडराएंगी। उस समय वो आत्माएं, अगर आप उस समय योग लगाते हो, वो आपको योग नहीं लगाने देंगी, क्योंकि भटकती हुई आत्माएं शांति चाहेंगी, शक्ति चाहेंगी, आपका सहयोग और सहारा चाहेंगी। उस समय आप कहो मुझे योग लगाना है, मैं थोड़ा शांति में बैठना चाहता या चाहती हूँ, थोड़ा ज्ञान का अध्ययन मनन चिंतन करना चाहते हैं, वो आपको नहीं करने देंगी। उस समय वो आपसे डिमांड करेंगी कुछ हमें दो, सूक्ष्म रूप से। आपका ऐसा दिल करेगा बैठे बैठे उठो छोड़ो, आज योग तो लगता नहीं, जा रहे होंगे क्लास करने के लिए, रास्ते से आएगा मन, आज नहीं कल चले जाएंगे छोड़ दो, तो आज चलते हैं वापस। ठंडी भी थोड़ी है, गर्मी कुछ भी है। अब वो सूक्ष्म आत्माएं आपके रास्ते में बाधक बनेंगी, वो आपको ये कार्य नहीं करने देंगे। अभी आपका टाइम है, अभी जो कर सकते हो कर लो। फिर इतना भयानक समय होगा, कुछ आत्माएं कुछ कमजोर आत्माओं में प्रवेश भी कर सकती हैं, लेकिन अधिकतर वो आत्मा शांति शक्ति और टिकाना ना होने के कारण वो आपसे इच्छा रखेंगे। लेकिन बाबा ने कहा, जो मेरे बच्चों ने जरूरत के समय इन आत्माओं को साकार दिया होगा, सहयोग दिया होगा, उन मित्र बनी आत्माओं को ये आत्माएं कभी कष्ट नहीं पहुंचाएंगी, कभी उनके रास्ते में बाधक नहीं बनेंगी, कभी उनमें प्रवेश हो करके उनके सुख हो दुख में परिणत नहीं करेंगी। ये समय है सारे विश्व के आत्माओं को अपना मित्र बनाने की। वचन से हम कितनों का मित्र बना सकते हैं, लेकिन ईश्वर की शक्तियों के साकाश से हम दूर बैठी आत्माओं को, अपरिचित आत्माओं को भी ईश्वरीय शक्तियों का सहयोग दे करके उनको अपना बना सकते हैं। और जो आत्माओं ने इस समय सेवा की होगी और उन आत्माओं को जरूरत के समय शांति का सहयोग, शक्ति का सहयोग, प्रेम का सहयोग, किसी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता के टाइम उन्हें आपने साकार दे करके उनको सहयोग दिया होगा, वो आपकी मित्र आत्माएं होंगी। और मित्र आत्माएं अपने मित्र को ऐसे समय पर जब वो भटकेंगे भी सही, वो आपको कष्ट नहीं देंगे। इसलिए बच्चों को इस बात का महत्व रखना चाहिए। ऐसा न समझें कि ठीक है बाबा से कनेक्शन जोड़कर हम शक्ति ले रहे हैं, हमें मालूम है शक्ति हम लेते हैं तो वाइब्रेशंस तो होते ही हैं, केवल ये वाइब्रेशंस मन में ले लो कि ये शक्ति सर्व आत्माओं को जाए, सर्व आत्मा इस शक्ति से संपन्न बन जाए। खाली इतनी ही तो मन की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना सर्व के लिए रखनी, और क्या है। योग में बैठे हैं, बाबा की याद का बल मिल रहा है और ये साकाश ये शक्तियां सबको मिल, इतना ही तो कहना है मन से। जिस पर मैं अपना एक एग्जाम्पल सुना रही थी कि पहले भोग लगता था तो संदेशियां ही सब स्थानों पर भोग लगाती थी, जो ध्यान में जाती थी वो हमारे संदेश ले जाती थी, वतन से संदेश ले आती थी। और मैं जिस सेवा केंद्र से बिलोंग करती हूँ, वो वर्ल्ड का पहला ही ब्रांच हुई माउंट आबू के बाद, कमला नगर सेंटर कहलाता था वो दिल्ली में, जहां पर गुलजार दादी के साथ मैं रहती थी, जगदीश प्राता जी रहते थे। तो वहां पर बहुत संदेशियां शुरू शुरू में थी, तो अचानक एक दिन कुछ संदेशियां बाकी सेंटर खुलने जब शुरू हुए तो सब डिमांड करते थे संदेशी भेजो, संदेशी भेजो, जब तक वहां संदेशियां बने तब तक संदेशियां हम सप्लाई करते थे। तो एक दिन ऐसा आया कि सब संदेशियां इधर उधर चली गई, क्लास में एक भी संदेशी नहीं पहुंच पाई। तो किसी ने, भाई ने कहा, दीदी आज कौन भोग लगाएगा? तो सब ने कहा दीदी लगाएंगी, और कौन लगाएगा। स्वाभाविक है कि जो निमित्त होती है बहन उस समय, तो वही भोग लगाएगी। तो मैं तो कभी भोग लगाती नहीं थी, संदेशी भोग लगाती थी। तो हम भोग लगाने बैठ तो गई, बैठना ही होगा, और रिकॉर्ड चलता है, चल उड़ जा रहे पंछी, अब ये देश हुआ बेगाना। तो मैं मन ही मन बाबा को कह रही थी, बाबा मैं तो कभी भोग नहीं लगाया, और कभी लगाने आपके पास ऐसे वतन में मैं आई नहीं, आज संदेशी कोई नहीं आई, आज मैं बैठी हूं, लेकिन मुझे तो भोग लगाना नहीं आता जैसे संदेशियां लगाती हैं। ऐसे मैं मन ही मन बाबा को कह रही थी, गीत चल रहा था, मेरा गीत की तरफ कोई अटेंशन नहीं था, इसी बात में था कि अब भोग कैसे लगाना है। तो जैसे बाबा का मुझे रिस्पांस मिलता है, मन ही मन से आवाज आती है, ऐसा उत्तर मुझे समझ में आया। बाबा ने कहा ये किसको कह रही हो कि मैंने कभी भोग नहीं लगाया, मैं भोग कैसे लगाऊंगी। तो मैं फिर बाबा को मन से ही कहती हूँ बाबा आपको कह रही हूँ। तब बाबा का रिस्पॉन्स फिर आता है, अगर तुम ये कह सकती हो कि मैंने भोग कभी ऐसे लगाया नहीं, मुझे लगाना नहीं आता, तो तुम ये भी तो कह सकती हो कि मैं भोग बाबा लेकर आई हूँ, मेरा भोग स्वीकार करना। वो कह सकती हो ये नहीं कह सकती हो। मैंने कहा ये तो कह सकती हूँ। तो कहा बस तुमने कहा मैंने स्वीकार किया। तो मुझे लगा बात तो अच्छी है, मैं तो ऐसे स्वीकार करा सकती हूँ। अब स्वीकार करा दिया मैंने भोग बाबा को मन से कहकर, बड़े प्यार से कहकर, प्यारे बाबा आज भोग मैं लाई हूँ आप स्वीकार कीजिए। बाबा कहते हैं मन को मन साक्षी होता है, मेरे पास तुम्हारा सब पहुंचता है। जब मैंने सोचा भोग पूरा हुआ तो जैसे संदेशी हिलती है, मैं भी थोड़ा हरकत में आई कि अपने वापस जाऊं, सब इंतजार में बैठे होंगे, मैं तो केवल रू रिहान कर रही थी, ट्रांस में नहीं गई थी। फिर मुझे ख्याल आया कि संदेशी तो जब वापस आती है तो वतन से संदेश लेकर आती है और वो तो आकर संदेश सुनाती है, तो मैं संदेश क्या सुनाऊंगी, सब कहेंगे दीदी संदेश सुनाओ कुछ। तो मुझे फिर बाबा कहता है आज जैसे तुमने मुझे भोग लगाया ऐसे मेरे बच्चों को भोग लगाने की विधि बता देना, यही मेरा आज का संदेश। मैंने सोचा ये भी ठीक हो गई बात, सभी को भोग लगाने की विधि भी आ जाए। तो मैं अपना ये अनुभव कई बार सुना देती हूँ कि बाबा को भोग संदेशी लगाती है, चलो बाबा संदेशी को एक वरदान है कि उसको दृश्य दिखाई देता है, अगर हमें दिखाई ना दे तो हमें मालूम नहीं है क्या कि बाबा हमारे हर मन की बात को स्वीकार करता है, क्यों नहीं करता है। मैं आपको अपना दूसरा अनुभव सुनाती हूँ जिससे कितना अंदर से फेस बैठता है कि प्रति पल बाबा हमारी सुनता है। एक बार गुलजार दादी जी जब मामा हमारी बीमार थे तो गुलजार दादी बॉम्बे में चले गए, क्योंकि आलमाइटी से संदेश आया था कि मामा को भोजन वही खिलाएंगी जो संदेशियां हैं। तो गुलजार दादी संदेशी थे, शीर इंद्रा एक दादी थी वो संदेशी थी, एक संदेशी संदेशी थी, ऐसे चार तीन चार संदेशियां थी। तो वो वहां थी तो मैं पीछे अकेली थी और जगदीश प्रहता जी अपने लिखने के काम में व्यस्त होते थे। तो मंडे का दिन था, सोमवार के दिन हमारी क्लास कहलाती थी माताओं की धारणा की क्लास। तो स्वाभाविक है जब गुलजार दादी नहीं है तो मुझे ही वो क्लास करानी होगी, लेकिन मेरी उस दिन इतनी अवस्था खराब थी, क्या बात हुई है मैं आज तक उस बात को याद करने की कोशिश भी की लेकिन कभी मुझे याद आया ही नहीं। लेकिन थी बड़ी खराब और ये मन में सोच रही थी कि मैं धारणा की क्लास क्या कराऊंगी, मेरी अपनी ही मनोस्थिति ठीक नहीं। लेकिन ये बात मैं किसी को अपनी बता भी नहीं सकती, किसी से सहयोग भी नहीं ले सकती क्योंकि मैं निमित्त हूं इस समय, गुलजार दादी है नहीं, जगदीश प्रहता जी अपने लिखने पढ़ने के काम में व्यस्त है। तो मैं क्लास में बहुत खामोश होकर बिल्कुल पीछे बैठी थी और उस समय हमारा सिस्टम होता था कि संदेशियां ही योग कराती थी। तो हम दो संदेशियों को बिठाया हुआ था, योग चल रहा था और संदेशी तभी ट्रांस में जाती थी जब हम उसको संदेश देते थे, बिना संदेश के वो कभी ट्रांस में नहीं जाती थी। उस दिन अचानक संदेशी में मामा आ गई। मामा का उस समय भी आना चलता था, बाबा भी आते थे। मामा जब आती थी तो मामा का बैठना ऐसे होता था तो पता चलता था मामा आ गई। तो सबको एकदम आश्चर्य हुआ कि आज क्या है जो दीदी ने मामा को आज आवाहन किया, और मुझे भी नहीं मालूम, मैंने भी आज कोई संदेश नहीं दिया और मामा आ गई। अब मम्मा ने आकर कुछ सबको दृष्टि भी नहीं दी पूरी, ऐसे करके और ऐसे देख के ऐसे कर रही, जैसे किसी को बुला रही। तो एक उठा, मम्मा ने ना कर, बैठ गया, दूसरा उठा, तीसरा, चार उठ चुके थे लेकिन पता नहीं चल रहा था मम्मा किसको बुला रही। अचानक मेरे को ख्याल आया, थोड़ा देह ध्यान आया कि मैं निमित्त हूं, अगर मैं उठी और मम्मा ने कहा नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आखिर जब तीन चार उठ चुके हैं तो मैं भी थोड़ा ऐसे ऐसे करने लगी, तो मैंने ऐसे किया तो मम्मा ने ऐसे कर दिया। मैं थोड़ा और ऊंची हुई तो मम्मा ने ऐसे किया, तो मैं उठ गई और नजदीक चली गई। मम्मा ने ऐसे बड़े प्यार से मेरा ऐसे हाथ पकड़ते हुए इतने ही शब्द कहे, आज मुझे बाबा ने आपके लिए भेजा है। अब मेरे को आंखों में पानी आ गया कि बाबा ने मामा को मेरे लिए आज खास भेजा है। मैंने कहा मामा मैं ठीक हूं। मानो मेरी मनोस्थिति, जब मैं बाबा की सेवा पर तत्पर हूं तो मेरी मनोस्थिति को संभालने वाला मेरा रक्षक बाबा है। और कैसे बाबा ने मामा को भेजा मेरे लिए, खास कहा कि बाबा ने मुझे आज खास आपके लिए भेजा है। तो मैं उस समय एकदम ऐसी खुश, ऐसी ठीक हो गई, मैंने क्लास कराई। लेकिन मैं आज तक याद नहीं कर पाई कि वो बात क्या थी। इस कदर मुझे तभी उसी क्षण से बात ऐसी भूल गई। तो मैं ये अनुभव इसलिए सुना रही हूं कि हम कभी ना समझे हम अकेले हैं, हमें इस चीज की कौन राय देगा, कौन हमारी सुनेगा। जब बाबा ने कहा है तुम मेरे हो मैं तेरा हूं, ऐसे बाबा अपने बच्चों को कभी छोड़ता नहीं है। इंसान इंसान को छोड़ सकता है, भगवान इंसान को नहीं छोड़ता है। ऐसे रक्षक बाबा की रक्षा के अंदर रहो और सदा उनसे संबंध जोड़े रखो। मन की कोई बात आ जाए तो बाबा को जरूर बता दो। आज भी कई बार बाबा कहते हैं कोई भूल हो गई है, कोई बात हो गई है, मन में चिंतन चल रहा है, मन खा रहा है, बता नहीं रहे हो। अब कहते जी अब किसको लिखी, अब तो ना दादियां कोई पढ़ने वाली हैं, ना बाबा है साकार में, ना निराकार पढ़ेगा, अब क्या करें। बाबा कहते हैं जैसे तुम करते थे वैसे ही करते चलो। आज भी अगर कोई मन में बात आ जाए, चिंतन आ जाए, कोई व्यर्थ बात आपसे हो जाए, कोई अवज्ञा हो जाए, मन खा रहा है, चिंतन चल रहा है, अपने घर में छोटा सा एक डिब्बा बना लीजिए, लगा लो उसको कुंडी ताला, लिखकर लेटर बड़े प्यार से जो आपकी अपनी बात है वो बाबा को दे दो। अगर कोई निमित्त बहन को बताकर उसका हल लेना है तो वो कीजिए, बहुत अच्छा है। अगर समझते वो नहीं कर पाएंगे, चलो बाबा को लिख दीजिए। आपका कागज आपके डिब्बे में रहेगा, लेकिन कागज में जो लिपिबद्ध किया जाएगा, जो लिखेंगे, वो तो बाबा के पास पहुंच जाएगा। क्योंकि बाबा के पास तो हमारे मन की बात पहुंचती है। पत्र तो पहले भी साकार के हाथों में जाता था, लेकिन पत्र माध्यम होता था निराकार को हमारी बात पहुंचाने की। क्योंकि मन में बात उठती है तभी तो कागज पर आती है। भले आप 10-15 दिन के बाद, 8 दिन के बाद कागज फाड़ के फेंक दीजिए, कोई अर्ज नहीं, लेकिन मन में चिंतन ना चलाओ, बाबा को दे दो। और इस निश्चय से दे दो कि वो मेरा दाता है, रक्षक है, मेरा सुप्रीम पिता है, टीचर है, इसलिए उनके साथ मेरे कनेक्शन बड़े गहरे और बड़े स्नेहपूर्ण होने चाहिए। इस प्रकार अगर बाबा के संबंध में हम चलते हैं तो बाबा हमारी हर पल रक्षा करते, हर पल वो हमारे साथ। ये भी नहीं बाबा कहते रोज रोज भूल करते रहो اور روز لکھ کر ڈال دو, بابا آج یہ ہو گیا, کل وہ ہوا, پرسوں یہ ہوا. بابا کہتا ہے نہیں بچے, معاف بھی کب تک ہوگا, اس کی سجا لو. سجا بھی کیا لو, کبھی ایک ٹائم کھانا کھا کے اور دوسرے ٹائم کے کھانے کا پورا ٹائم یوگ میں بیٹھنا ہے. کچھ سجا بھی تو لینی چاہیے, سجا بھی ایسی جس سے آگے سے بھی کرم نہ ہو. ایسا بھی نہیں کھانا چھوڑ کے بیٹھ جائے, کھانا دیا, شریر بھی آپ کا نہیں, وہ بھی بابا کا ہے, اس کی بھی سنبھال کرنی ہے. لیکن اپنے آپ کو کسی ایسی امپورٹنٹ جو آپ کی اچھائیں ہیں, جو آپ کو پریہ لگتا ہے, اس پریہ چیز کا تیاگ کر دو. سمے کتنا بھی کوئی کہے ٹچ نہیں کریں گے, کیونکہ مجھے اس غلطی کا احساس ہوا ہے, کچھ تھوڑا اس کا دنڈ مجھے لینا چاہیے. تو بابا بچوں کے سدا ساتھ ہے, کہیں دور نہیں. تو بابا کا ایک سندیش میں سناتی ہوں, کیونکہ ٹائم بہت تیزی سے جا رہا ہے. تو بابا کا ایک سندیش تھا ایک بار, کہ شریر کو کیا کہتے ہیں, گاڑی کہتے ہیں ہم, بھی کار ہے اور کار کی آتما ڈرائیور ہے. تو اب دیکھیے, کسی لمبی جرنی پر جب کار کو لے کر جانا ہوتا ہے, تو لمبی یاترا پر جانے سے پورو کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے, تاکہ کار راستے میں دھوکھا نہ دے. پہلی بات ہے کہ اس کار کی جو لائٹس ہیں, آگے کی لائٹ بھی ٹھیک ہونی چاہیے, تاکہ راستہ صحیح دیکھ پائیں, اندھکار میں اندھیرے میں کہیں بھٹک نہ جائیں, ٹھوکر نہ لگ جائے. لیکن پیچھے کی لائٹ بھی ٹھیک ہونی چاہیے, تاکہ پیچھے آنے والوں کو بھی معلوم ہو کہ آگے کار جا رہی ہے, ان کو بھی راستہ ٹھیک دکھائی دے سکے. دوسری بات, اس میں پیٹرول ٹھیک ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو تھوڑا پیٹرول ہو, راستے میں گاڑی کھڑی ہو جائے, پیٹرول پمپ پاس نہیں اور آپ کھڑے رہ جائے. تو بابا نے کہا, امنگ اور الاس, کوئی بھی کاریہ پرارمبھ کرو, اپنے من میں امنگ اور الاس ہونا چاہیے, ہمت ہونی چاہیے. مدد باپ کرے گا, لیکن تمہارے پاس امنگ الاس ہمت رہے. یہ پیٹرول ہے. اور مارگ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کلیئر, کہ میرا مارگ گیان اور یوگ ہے, اسی مارگ پر مجھے چلنا ہے. کیا بابا نے مجھے شریمت دی ہے, کوئی بات نہ سمجھ آ جائے, تھوڑی میگزین تھوڑی کتابیں اٹھا کر کے دیکھنا شروع کرو, بابا نے اس بات کے لیے کیا بات کہی ہوئی ہے, مل جائے گا آپ کو. گیان اور یوگ یہ ہمارا مارگ ہے اور منزل ہماری ہے. منزل کا بھی معلوم ہونا چاہیے, ڈرائیور کو جا رہا ہے کہاں جانا ہے. مکتی اور جیون مکتی ہماری منزل. تو آگے کی دو لائٹ ہیں, آگے کی لائٹ ہے, پیچھے کی لائٹ ہے, پیٹرول ہے, مارگ ہے, منزل ہے. اور اس کے علاوہ جیسے وہ گھماتے ہیں نا, سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے, تو وہ ہے ہمارا ڈراما, کہاں سٹارٹ کرنا ہے, کہاں سٹاپ کرنا ہے. وہ سب بریک بریک سب ٹھیک ہونی چاہیے, تبھی آپ گاڑی لمبی یاترا پر لے کر جا سکتے ہو. تو بابا بھی ہم بچوں کو کہتے ہیں, تمہاری گاڑی ہے, تم گاڑی میں چڑھتے ہو, سارا دن تم نے سیر کرنی ہے, یاترا کرنی ہے, تو اس کے پاس, آپ کے پاس یہ سب چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے. چھ چیزیں دیکھو. اب میری آگے کی لائٹ تو ہو گئے میرا مما بابا, میں چل رہی ہوں, میں کتنے تک باپ دادا کو فالو کر رہی ہوں. ساکار میں بابا نے کیا کیا, ساکار میں مما نے کیا کیا. آج ہمارے پاس انبھوی کچھ انبھو سناتے ہیں, اور انبھووں کی ڈھیر پستکیں بن کر آ گئی ہیں. میں کئی بار جگدیش برادر جی جب لکھتے تھے, میں کہتی تھی کیا اتنا لکھتے جاتے ہو, کہتے تھے آپ کو نہیں معلوم, ٹائم ایسا آئے گا کہ بہت آتمائیں پیچھے آئیں گی, ان کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی, اس کے لکھ کر رکھ دی جائے تاکہ ان کو سمے پر کام آئیں گی. اور آج وہ چیزیں ہیں, دیکھیں. تو اپنا جیون ہم بابا کے آدرشوں پر چلائیں, और हमारी अपनी लाइट भी, अपनी जो लाइट है बैक साइड की लाइट, मेरी लाइट, मेरा जीवन। बहुत लोग हैं जो हमको देखकर चलने वाले। बाबा कहते कभी ना समझो मैं अकेला हूं, आप मंच पर हो। 600-700 करोड़ जितनी आत्माएं हैं वो सब आपको देख रही हैं। सूक्ष्म में आपके संकल्पों के भी वाइब्रेशंस प्रभाव डालते हैं। अगर आपकी अपनी लाइफ ठीक नहीं होगी, अपना जीवन ठीक नहीं होगा, तो दुर्घटनाएं घटित होती रहेंगी। उसमें दुर्घटना में पीछे वाले को भी नुकसान होगा और आपको भी नुकसान होगा। इस चीज का बड़ा ध्यान रखना। ड्रामा का ध्यान रखो, कहां ड्रामा का इस्तेमाल करना है, ब्रेक लगाने, स्टॉप करने, स्टार्ट करने है गाड़ी, कहां ड्रामा को हमने यूज करना है, ये सब चीजें ध्यान रखकर चलो। इस प्रकार अपनी गाड़ी पर आता है, जब स्टार्ट करो तो ध्यान रख लीजिए। बाकी आप बच्ची में आए हैं, बाबा ने कई बार कहा है ये 8 बार सोचो, ये 5 बार सोचो, ये 2 बार सोचो, ये ड्रिल है तुम्हारी। और मैं नहीं समझती सब बच्चे हमेशा वो ड्रिल करते रहते होंगे। यहाँ आपको समय मिला है और समय निकाल कर आप सब आए, जरूरी काम छोड़ कर आए हो, इसलिए कभी बाबा जैसे कहते हैं निराकारी स्वरूप और फिश्ता स्वरूप। आज तो मैं सुबह इतने घंटे तक निराकारी और फिश्ते स्वरूप का ही अभ्यास करूं, आज शाम को तो मेरा अभ्यास पांचों स्वरूपों का ही रहेगा, जो जो ड्रिल बाबा ने बताई है। कभी बाबा कहते हैं अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी, अभी अभी अव्यक्त फरिश्ता, अभी अभी गोल्डन वर्ल्ड में घूम रहे हैं। बच्चे ये एक्सरसाइज करो, डॉक्टर भी आज कहते हैं हेल्दी बनने के लिए आपको एक्सरसाइज भी जरूरी है, और हमारे बाबा भी कहते हैं स्पिरिचुअली हेल्दी बनने के लिए ये एक्सरसाइज भी जरूरी है। अब बाबा हम बच्चों को ड्रिल, बहुत ड्रिल बताई, और मैं देखती हूँ यहाँ पर आपको कमेंट्री भी वेराइटी मिलेंगी, वो एक प्रकार के ड्रिल है। ड्रिल कहते ही मुझे बाबा की याद आ गई कि बाबा ने एक बार शुरू में जब बाबा के कमरे में ही आलमैठी बाबा का आना होता था अव्यक्त बाप दादा का, तो एक बार अव्यक्त बाप दादा गुलजार दादी के कमरे में, गुलजार दादी के तन में बाबा के कमरे में आए थे, और उस समय जो पार्टीज आती थी वो थोड़ी थोड़ी पार्टीज होती थी, 10-12-15 इतने ज्यादा लोग होते थे, और बाबा के कमरे में ही मिलते थे। बाबा का आवाहन करने के लिए थोड़ी दीदी दादियां बाबा के सन्मुख बैठती थी, जब बाबा आते थे कुछ महावाक्य उच्चारण करते थे, और जब जाना होता था फिर भी बाबा के सामने दीदी दादियां आती थी थोड़ी, और फिर बाबा छुट्टी लेकर जाते थे। तो एक बार जब बाबा आए तब बाबा ने कहा आज लास्ट में पार्टीज के मिल लेने के बाद बाबा बच्चों को एक ड्रिल बताएगा। बाबा ने इतना ही कहा, तो मैं भी बहुत सुना था मैंने ये बात पहले, और मैं बड़ी उत्सुक थी कि कहीं ये मिस ना हो जाए, पार्टीज मिल ले तो हम बाबा को जाके देखिए आज बाबा क्या ड्रिल कराता है। आज हम उसको ड्रिल शब्द देते हैं, बाबा ने उस समय ये शब्द कहा, लेकिन बाबा ने किस गुप्त रूप से कहा। जब लास्ट हुआ बच्चे सब बैठ गए तो बाबा ने कहा बच्चे चलना है घर, चलना है सब घर, चलना है जाना है, चलो बाबा साथ लेकर चलता है, चलो चलो सब चलो सब चलो 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 कहता है। तो चला भी गया, सब बच्चे तो बैठे रहे। तो बाबा ने किस प्रकार देह से आत्मा इतनी न्यारी हो जाए कि मौका आए चलो, तो वो देह से अलग होकर जा सके। साकार तन का आधार लिया बाबा ने, लेकिन आधार समझकर आधार लिया, आधार छोड़ दिया, चला गया। हम तो सब बैठे रहे। तो ये अभ्यास इस भट्ठी के दरमियान अवश्य कीजिएगा कि जब चाहे हम इस देह में हैं, जब चाहे हम मूल वतन में, ज्योति देश में, ज्योति स्वरूप रूप में, ज्योति बिंदु बाबा के सम्मुख हैं, जहां चाहे वहां चले जाएं। तो ये सब अभ्यास के लिए ही आप सबकी भट्ठी का ये आयोजन हुआ है। और बहुत खुशी है कि ऐसे महान अपने पुरुषार्थ में आप बनकर यहाँ से जाएंगे तो अन्य आत्माओं को भी आपके जीवन से प्रेरणा मिलेगी। ओम शांति।
चल मन तन तिहर तिहर मन मचल मचल हर पल तेरे गुण गाता है भगवान।